आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सिर्फ ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ। महाराज शांतनु गंगा के किनारे अकेले खड़े खड़े बहती धारा को एक टक देखे जा रहे थे। हमेशा की तरह आज भी वो अपनी वही पुरानी गलती को याद करके पछता रहे थे जिसने उनसे उनकी प्यारी पत्नी गंगा को छीन लिया था। अपने आप से बार बार वही प्रश्न की, पत्नी की बातों पर भरोसा न करके आखिर उन्हें क्या मिला? सिर्फ दुख, अशांति और ये अकेलापन। लेकिन एक पिता के लिए इस तरह चुप रहना भी तो आसान नहीं था। पत्नी गंगा ने एक एक करके उनके 7 बेटों को अपने जल में बहा दिया था। जब 8वें बेटे के साथ भी गंगा वही करने लगी तो महाराज शांतनु से नहीं रहा गया। वो पत्नी गंगा से ये पूछने पर मजबूर हो गए थे कि ये क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्यों एक के बाद एक मेरे बेटों को इतनी निर्दयता से जल में बहा रही हो? कैसी माँ हो तुम? महाराज शांतनु बेटों के मुंह में गंगा को विवाह के समय दिया हुआ वचन भूल गए थे कि गंगा कुछ भी करे पर शांतनु अपनी पत्नी से कभी भी नहीं पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बेटों के मुंह ने उन्हें सब कुछ भुला दिया था। मुंह तो आदतन गलतियां ही करवाता है, सो वो भी भूल कर बैठे। देवी गंगा ने महाराज शांतनु से कहा, आपने अपना वचन तोड़ दिया है महाराज। मैं गंगा हूं और आपके 8 बेटे 8 वसु हैं जिन्हें वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया था। 8 वसुओं को श्राप से मुक्त करने के लिए ही मैंने आपसे विवाह किया और इन्हें अपने गर्भ से जन्म दिया ताकि ये मनुष्य योनि से मुक्त हो सके। 7 वसु तो मनुष्य योनि से मुक्त हो गए और ये 8वां बेटा वसु प्रभाष है जिसे अब मनुष्य योनि में एक लंबा जीवन जीना पड़ेगा। आपने भूल कर दी महाराज। इतना कहकर देवी गंगा 8वें बेटे को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। देवी देवता और सिद्ध लोग हमारी आपकी तरह किसी मोह में नहीं पड़ते हैं। देवी गंगा भी जिस काम के लिए महाराज शांतनु के जीवन में आई थी वो काम पूरा होते ही वो अपने लोग वापस चली गई। वैसे महाराज शांतनु के बारे में हम सब थोड़ा बहुत जानते ही हैं, फिर भी उनका परिचय उनके पिछले जन्म को जाने बिना पूरा नहीं हो सकता। उनके पिछले जन्म का परिचय इस प्रकार है कि इक्ष्वाकु वंश के महाराज महाभीष ने अपने जीवन काल में हजारों यज्ञ करके अपने प्रताप से मृत्यु के बाद स्वर्गलोक प्राप्त किया था। एक बार राजर्षि महाभीष और कुछ अन्य राजर्षि ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गए हुए थे। सब लोग ब्रह्मा जी से बातचीत कर रहे थे, इसी बीच वहां देवी गंगा आ जाती हैं। देवी गंगा से भी उन सब की बातें होती। इतने में अचानक हवा के एक झोंके से देवी गंगा के कंधे का वस्त्र खिसक कर नीचे आ जाता है। स्वर्ग लोक की मर्यादा को मानते हुए सभी राजर्षि तुरंत अपनी आंखें मीच लेते हैं, लेकिन महाभीष ऐसा न करके देवी गंगा को लगातार देखते रहते हैं। देवी गंगा भी राजर्षि महाभीष की ओर आकर्षित हो जाती है। इस एक भूल के कारण राजर्षि महाभीष और देवी गंगा जी को ब्रह्मा जी श्राप दे देते हैं। श्राप के कारण राजर्षि महाभीष को एक बार फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तब महाभीष हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के बेटे शांतनु के रूप में जन्म लेते हैं। महाराज शांतनु शिकार करने में महारथी थे और इस विशेषता के कारण उनका नाम चारों दिशाओं में फैल रहा था। वो शिकार को भी एक साधना के रूप में करते थे। जब वे शिकार करते थे तो कई कई घंटों तक भोजन भी नहीं करते थे, पानी भी नहीं पीते थे, प्यासे रहते थे। सेवकों को उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता था। महाराज शांतनु शिकार के लिए जंगलों के अलावा अक्सर नदियों के किनारे भी जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन शिकार करते करते वे गंगा के किनारे दूर निकल गए थे। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी और सेवक पीछे छूट गए थे। जब प्यास के कारण उन्हें कष्ट होने लगा तब शिकार से उनका ध्यान भंग हुआ। आसपास किसी को न पाकर जब पानी के लिए उन्होंने नदी की ओर देखा तो एक बहुत ही सुंदर युवती को नदी से बाहर आते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो युवती और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी गंगा थी। आगे चलकर जिनसे महाराजा शांतनु का विवाह होता है। महाराज शांतनु गहरी सोच में डूबे थे। गंगा को उनसे बिछड़े हुए आज 16 वर्ष बीत गए थे। इन बीते वर्षों में बड़े से बड़ा सुख भी महाराज शांतनु के लिए कभी सुख नहीं रहा। राजपाट में मन ही नहीं लगता था उनका। देवी गंगा के साथ बीते समय के अलावा उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं भाया। दुनिया से उनका मोह टूटता जा रहा था। महाराज की ऐसी हालत देखकर हस्तिनापुर की प्रजा बहुत परेशान थी। क्या कुरुवंश का दीपक अब हमेशा के लिए बुझ जाएगा? क्या महाराज शांतनु का वंश यहीं पर रुक जाएगा? क्या हस्तिनापुर का सिंहासन इस तरह खाली पड़ा रह जाएगा? ऐसा नहीं कि महाराज शांतनु खुद ये बातें नहीं समझते थे, लेकिन अपनी मजबूरी के आगे बार बार कमजोर पड़ जाते थे। आज महाराज शांतनु अकेले गंगा के किनारे चलते चलते आस पास के पेड़ पौधों से बातें करते जाते हैं। धीमे धीमे बहते झोंकों से पूछते जाते हैं, पंछियों से भी पूछते हैं कि क्या गंगा को कभी मेरी याद नहीं आती? क्या मेरे प्यार को भुला दिया उसने? क्या कोई किसी के लिए इतना निर्दयी हो सकता है? गंगा के किनारे सैर करते हुए महाराज शांतनु ने अचानक एक अजीब सा दृश्य देखा। उन्होंने देखा एक बहुत ही आकर्षक नवयुवक धनुष बाण का अभ्यास कर रहा है। उसने अपने बाणों से गंगा की धारा के आगे मेड़ सी खड़ी कर दी है, जिससे जल की धारा वहीं रुक गई है। एक बूंद पानी भी आगे बहता दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज शांतनु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। ऐसे में उन्हें देवी गंगा की बड़ी याद आने लगी। वो जरा सा और आगे बढ़े क्योंकि वो उस नवयुवक को पास से देखना चाहते थे। इतने में ही वहां देवी गंगा प्रकट हो गई। गंगा को देखते ही महाराज शांतनु को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो ये नवयुवक उन्हीं का वो आठवां बेटा है जिसे गंगा को उन्होंने जल में बहाने नहीं दिया था और प्रश्न कर लिया था।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।